ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथाम् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम् राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री बरसाना धाम की, श्री वृंदावन धाम की जय हो। इस तरफ आ जाना। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो आप सबका श्री बरसाना धाम में स्वागत है। हरे कृष्णा, जय हो, जय श्री राधे श्याम। भौतिक जीवन जो है वो बहुत ही कष्टमय है। इस भौतिक जीवन में कब क्या होगा, कौन सा कष्ट आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और कभी कभार थोड़ा बहुत सुख का अनुभव होता है जब दुख नहीं होता है। ऐसे भौतिक दुनिया में हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, सुख जवा पाड़े दुख पर्वत आय बड़ी। आप जौ जानते हैं, जौ होता है ना बार्ली, उसके इतने से दाने होते हैं। उतना से सुख मिलने के लिए या मिलने के लिए हमको पर्वत समान दुख का अनुभव जब होता है, उसके बाद में थोड़ा सा इतना सा सुख का अनुभव होता है, और फिर दोबारा उस उतना अनुभव मिलने के पहले दोबारा फिर पर्वत समान दुख का अनुभव भोगना पड़ता है। और वो पर्वत समान दुख भोगने की इतनी आदत बन जाती है कि लगता है यही जीवन है, ये नॉर्मल है ऐसा लगता है। जैसे हम लोग अभी ट्रेन में आ रहे थे ना, तो एक बच्चा था बाजू में, तो बेचारा रात भर रो रहा था। तो माँ बाप को लगता है कि बच्चा है तो रोएगा ही ना, ये नॉर्मल है। ऐसा हम भी समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे तो, है ना। पर पॉइंट ये है कि बच्चे को दर्द है, कहीं ना कहीं पीड़ा है, इसलिए माँ के गोद में भी रो रहा है। वो माँ बाप ऐसे समेट के बैठे उसको, फिर भी रो रहा है। जन्म लेते भी रोते होते आया है, तो शायद बहुत साल रोएगा जब पहली बार हंसेगा कभी बीच में, तो उसके बीच में बहुत बार रोएगा वो। जब तक खुद को संभल नहीं पाएगा तो रोते रहेगा वो। तो जीवन की शुरुआत ही रोने से होती है और बहुत काल रोने में जाता है। फिर थोड़ी जवानी आती है और खुशियों का थोड़ा सा अनुभव होता है, फिर दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक। फिर क्या सोचा था क्या और क्या हो गया, ये गीत गाते हैं, है ना। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। फिर कुछ समय बाद बुढ़ापा आता है, फिर जोड़ों दर्द करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ जाती है, पेट में दर्द होता है, आंख में दिखता नहीं है, बहुत सारी तकलीफ होती है। और एक दिन अति वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, उसको चलने को भी नहीं आता है, दांत सब गिर जाते हैं। और एक दिन ये सबका अंत जो है मृत्यु में होता है। जन्म होता है तो व्यक्ति रोता है, सब हंसते हैं, लेकिन मृत्यु में वो भी रोता है और सब रोते हैं। लेकिन ये चलता है सिलसिला, जो रो रहे हैं उनका भी नंबर आएगा, वो भी जाएंगे और दूसरे उनके लिए रोएंगे, और जो आज दूसरों के लिए रो रहे हैं वो भी एक दिन जाएंगे और दूसरे उनके लिए रोएंगे। तो ये जो जीवन है इस प्रकार का, ये सत्य है, ये भूलभुलैया नहीं है। ये दुखमय जीवन है और इसमें सबको कष्ट मिलता है, कोई बचता नहीं है। सबसे टॉप व्यक्ति को भी कष्ट मिलता है, सबसे पावरफुल अधिकार जिसके पास में है उसको भी कष्ट होता है, दुख मिलता है, और जो कमजोर है बेचारा उसको भी कष्ट मिलता है, कोई छूटता नहीं यहां पर। तो ऐसे दुख भरे जीवन में और भौतिक जगत में जीते समय एक ही आशा का किरण है, वो है जब किसी संत की कृपा हो जाए तो इसमें कुछ आशा नजर आ सकती है। और जब संत की कृपा होती है तो फिर संत का संग प्राप्त होता है, यानी कि सत्संग प्राप्त होता है, और उस संत के संग में फिर जीवन का उद्देश्य पता चलता है, या ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण पता चलता है। सब लोग पूछ तो रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि आम आदमी के पास उसका जवाब नहीं रहता है, उसका जवाब केवल संत के पास रहता है। फिर संत से पता करने के बाद भी फिर हमको पता चलता है, लेकिन हमारे पास वो मूलभूत रूप से नहीं रहता है। जब संत बता देते हैं, हम पूछते हैं, संत को मिलते हैं और वो बताते हैं, तो पता चल जाता है कि ये क्यों हो रहा है। तो कई जन्मों के पाप पुण्यों का हिसाब किताब है, कई जन्मों की अतृप्त इच्छाओं का हिसाब किताब है। एक पाप की राशि है, एक पुण्य की राशि है, और बहुत सारी इच्छाओं का ढेर है। इन तीनों को मिलके हमारा स्वभाव बनता है और हमारी जिंदगी बनती है। हाँ, एक पापों का भार है, एक पुण्य का भी भार है, और एक बहुत ढेर सारी इच्छाएं हैं। ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, वो पूरा करना है। ये तीनों मिलके अगर समझो 10 ग्राम में बनाया जाए, 10 ग्राम, तो उस 10 ग्राम को स्वभाव बोलते हैं। और ये सारा जो है जैसे के वैसा, वो हमारी जिंदगी है। धीरे धीरे कुछ पुण्य का फल मिलेगा, कुछ कुछ पाप का फल मिलेगा, कुछ इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास होगा तो कुछ पूर्ण होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ धक्का लगेगा, कुछ होगी या नहीं होगी, अधिकतर तो नहीं होगी, भूल भुलैया ये सब। तो ऐसे जिंदगी में जब संत की कृपा हो जाती है तो इसका उद्धार होना आरंभ हो जाता है। फिर क्यों उसका जवाब मिलता है और फिर कैसे टालना है उसका भी जवाब मिलता है। वो फिर होता है शुरू आध्यात्मिक जीवन, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च भाग्य है, जिसके लिए मनुष्य जीवन दिया गया है, वो है आध्यात्मिक जीवन। उसको प्राप्त करने के लिए ये जीवन दिया है। अगर ये हम लोगों को समझ में नहीं आया तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। हो सकता है हम विश्व में सबसे सुंदर व्यक्ति हों, या विश्व की सबसे सुंदरी हम हो, या विश्व के सबसे पढ़े लिखे हम हो, या सबसे पावरफुल हम हो, हम किसी भी से इसमें से हो सकते हैं। फिर भी अगर इतना सब अच्छा अच्छा होने के बाद भी अगर हमको ये पता नहीं चलता है कि ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला हुआ है, तो वो सब बड़ी बड़ी बातें जो है ना, सुंदरता, ऐश्वर्य, अधिकार, वो सब बेकार है। और जब पता चलता है कि ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए है, तो फिर वो जो सौंदर्य है उसको भी कीमत आ जाती है, जो वो अधिकार है उसको भी मूल्य प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, डिग्री प्राप्त हुई, उसको भी एक अर्थ प्राप्त होता है। हर चीज अर्थपूर्ण बन जाती है जब वो नॉलेज मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारे जीरो हैं और उसमें एक लगाएंगे तो हर एक जीरो का एक वैल्यू आती है, नहीं है तो वो जीरो ही, लेकिन एक को 10 की वैल्यू होती है, फिर 100 की होती है, फिर 1000 की होती है, फिर 10,000 की होती है, फिर 1,00,000 की होती है। खाली जीरो लाइन में खड़े हैं, एक सामने आते ही हर शून्य को अपनी अपनी कीमत प्राप्त हो जाती है, और ऐसी कीमत प्राप्त हो जाती है, और एक जीरो लगाओ तो और कीमत प्राप्त हो जाएगी, और लगाओ तो और प्राप्त हो जाएगी, लेकिन एक निकाल दो तो ये सारे जीरो हैं, इसको गिनती करो सब मिलकर जीरो ही बन जाता है। होता है ना ऐसे? उस तरह से हमारी जिंदगी है, सब कुछ बेकार है जब तक भगवान का संबंध आश्रय नहीं है। और सब कुछ बहुत अर्थपूर्ण है, बढ़ते हुए मूल्य वाला है, जब उसमें भगवान एक जुड़ जाएंगे तो सब कुछ जो बेकार है वो अर्थपूर्ण हो जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए अर्थपूर्ण हो जाएगा, बढ़ते मूल्य से पूर्ण हो जाएगा वो। और उसी संत की कृपा का ये परिणाम है कि हम धाम में पहुंच जाते हैं। जब शहर में थे तो भगवान का नाम परिचय हुआ, संत का परिचय हुआ, उनके द्वारा जीवन का उद्देश्य पता चला, फिर उनके बाद में भगवान का नाम मिला, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए ये पता चला, कुछ भगवान की सेवा होती है वो करनी चाहिए, उनका दर्शन करना है, उनका श्रृंगार करना है, उनको भोग लगाना है, उनका प्रसाद ही पाना है और कुछ पाना नहीं है, उनके द्वारा बताए गए बहुत सारे शास्त्र हैं। अच्छा, ऐसा भी है, वो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा खाली फिल्म स्टार के ही मैगजीन आते हैं, द स्टार डस्ट और फेमिना और ये और वो, मुझे पता नहीं था कि भगवान की भी किताबें हैं। अच्छा, भगवद गीता भी है, श्रीमद भागवत भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी है, अच्छा उसको पढ़ना भी चाहिए, ये भी पता चलता। और बाद में पता चलता है कि अरे भगवान के कुछ धाम भी है, यहाँ भगवान आए थे और लीला भी करते थे, अभी अंतर्धान हो गए लेकिन लीला की स्थलियां अभी भी है, और कहते हैं कि वहां पर अभी भी भगवान की लीलाएं चलती रहती है। अच्छा, तुम्हें जाना चाहिए वहां पर। दर्शन करना चाहिए। ऐसे संत की कृपा जब होती है ना, पहले तो वो ज्ञान देते हैं, बिना ज्ञान के अवगत करने के पहले कुछ होता नहीं है, पहले आपको अवगत होना पड़ेगा कि हाँ भाई बरसाना धाम है कोई, जहां पर राधा रानी नाम की व्यक्ति, राधा रानी भगवान की प्रियतमा निवास करती है वहां पर, और वहां पर ऐसे ऐसे लीलाएं हुई है। ओ तो ज्ञान पहले होता है ना, आपको सुनते ना पहले आप, जैसे हमारे नर्सिंग के विद्यार्थी सुनते हैं पहले सीनियर लोगों से कि ऐसा कुछ जगह है जहां पर कैंप होता है और बहुत मजा आता है वहां पर, तो सब लोग वेट करते हैं उनका टर्न कभी आएगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। वैसे पहले सुनते हैं, अवगत हो जाते हैं, उसके बाद में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हम लोग भी पहुंच गए हैं, आप कुछ लोग तो बहुत बार आ गए होंगे, आप तीसरी बार आए शायद अनिल, हाँ सेकेंड टाइम आए, तो कई बार कई लोग आप बहुत बार आए होंगे शायद, कुछ लोग पहली बार, कितने लोग आए? राधे राधे, जय श्री राधे। तो हर बार कोई ना कोई पहले होते ही हैं। तो ये जीवन की बहुत बड़ी सर्वोच्च प्राप्ति है, अति सर्वोच्च प्राप्ति है। जैसे प्रधानमंत्री के घर में आपको जाने का मौका मिला तो आपको कितने भाग्यवान समझेंगे आप, जाने के पहले ही दुनिया को एडवर्टाइज कर देंगे मैं जा रहा हूं, मेरा अपॉइंटमेंट है, अभी तो गए नहीं, हुआ नहीं अब तक, लेकिन आप पूरा सबको बता देंगे, जितना लोग मिलते हैं उतना जाते आते उठते बैठते खाते पीते सबको बताते रहेंगे मैं जा रहा हूं, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट है। और समझो वहां पहुंच गए तो आपका एक ऐसा हॉल में मीटिंग का समझो अपॉइंटमेंट है, बड़ा हॉल है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें आप भी बैठे हैं, दो मिनट का आपको टाइम दिया गया है, तो भाग्य ही वो, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री बोलते हैं चलो अंदर चलते हैं, और वो आपको उनके बेडरूम में लेके जाते हैं, उनके डाइनिंग रूम में लेके जाते हैं, तो इधर बैठो साथ में भोजन करेंगे आज, तो भोजन भी करते हैं, बोलते चलो बेडरूम में चलो थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे आप उसको, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है बोलेंगे, हाँ क्या कहेंगे उसको, परम भाग्य बोलेंगे ना, परम भाग्य, सोचा भी नहीं था ये, तो हमने सोचा ही नहीं था, तो ऐसा परम भाग्य है ये। एक तो आप भगवान के दिव्य धाम में आए, ये ऐसा धाम है भगवान का जहां पर भगवान को जब भगवान मैं हूं ये छोड़कर और भूलकर खेल खेलने का दिल होता है ना उनका, तभी यहां पर आते हो। जब उनको राजपाट करना होता है तो वो द्वारका चले जाते हैं, वो राजा बनकर द्वारकाधीश बनकर राज्य करते हैं। जब उनको भोजन करने का दिल होता है तो वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां पर छप्पन भोग खाते हैं। जब उनको लगता है कि अभी तपस्या करनी चाहिए, भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान हर चीज में एक्सपर्ट हैं और हर चीज करना भी चाहते हैं, हर चीज करते भी रहते हैं। तपस्या करने का दिल होता है तो वो नॉर्थ में चले जाते हैं, नर नारायण ऋषि बन के हजारों साल तपस्या करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं उस समय, केवल तपस्या नहीं करते, तपस्या में चमत्कार भी कर देते हैं, और ये सब करके जब नींद आती है तो साउथ में चले जाते हैं, सब सो रहे हुए हैं, किधर भी जाओ उधर, क्या कांचीपुरम में जाओ, श्रीरंगम में जाओ, बहुत जगह सोए हुए हैं, बीच बीच में कई खड़े हैं ऐसे, लेकिन सोए हुए ऐसे सोए हुए हैं कि तीन दरवाजे में जाना पड़ता है देखने के लिए, एक दरवाजे में हाथ ऐसा और सर ऐसा, एक दरवाजे में केवल वक्षस्थल है, एक दरवाजे में केवल पैर है, इतने बड़े बड़े, तो ये दर्शन करने के लिए तीन दरवाजे में जाना पड़ता है, ह्यूज हाथ भी ऐसे ना कि आपका आधा शरीर तो एक उनका हाथ ही है, इतने बड़े, लेकिन चारों जगह पर वो भगवान है, सब जानते हैं कि भगवान है, भले तपस्या कर रहे लेकिन जानते हैं कि भगवान है, ये खा रहे फिर भी मां जानते भगवान है, सो रहे फिर भी जानते भगवान है, लेकिन यहां पर है ना कोई जानता नहीं कि वो भगवान है, ना मां जानती है, ना पिताजी जानते हैं, ना दोस्त जानते हैं, ना सखियां जानती है, कोई नहीं जानता है, इसलिए विशेष जगह है, क्योंकि जो भगवान दुनिया के मालिक है उनको भी इच्छा होता है भी सब जगह जानते हैं मुझे लोग भगवान के रूप में, कोई ऐसी जगह है क्या क्या जहां मैं जाऊंगा और मुझे कोई भगवान के रूप में पहचाने का नहीं, मैं एक सामान्य जीवन के जीव के समान रह सकता हूं, एक दोस्त बनकर एक बालक बनकर नटखट लीला कर सकता हूं, चोरी करके खा सकता हूं, भगवान रहूंगा तो चोरी कैसे खा करके खा कैसे सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो वो ऐसी जगह बनाते हैं खुद, और सबसे पहले अपने जितने शुद्ध भक्त हैं, जो परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके बारे में साक्षात्कार भी कर लिया है, उनका वो ज्ञान पहले छीन लेते हैं, ज्ञान हरण कर लेते हैं उनका। अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री है तो दंडवत ही करते रहेंगे ना आप तो बाकी लीला करने का समय कहां मिलेगा, मीठी मीठी बातें करने का, तो प्रणाम ही करते रहेंगे। इतना आदर रहेगा मन में आपके कि आप दंडवत के अलावा कुछ कर ही सकते नहीं, गदगद हो जाएगा कंठा, आपको बोले नहीं पाएंगे कुछ। तो इसलिए पहले वो आपको वो ज्ञान छीन लेंगे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, एक सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे, फिर आप गले लगाएंगे, फिर डांटेंगे उनको, कुछ भी गुल्ली डंडा खेलेंगे, उनके मुंह से कुछ छीन के खाएंगे, वो भी आपके मुंह से छीन के खाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पहला वो काम करते हैं और फिर ये धाम बनाते हैं और अपने उन लोगों को लेकर आते हैं जिनके साथ वो ऐसा खेल खेल सकते हैं। ब्रह्मा और इंद्र को लेकर नहीं आते आप, क्योंकि उनके साथ में वो ऐसा खेल नहीं खेल सकते। जैसे मेरे ऑफिस में गया मैं भक्ति विद्यानंद हॉस्पिटल के, अचानक मुझे समझो गेंद खेलने का दिल आया, तो बोले किस स्टाफ को कैसे बुलाऊंगा, अरे आजा थोड़ा गेंद खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे, अभी मकर संक्रांति का टाइम है, थोड़ा पतंग तो फिर की पकड़ तो मैं पतंग उड़ाता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता ना, मुझे कहीं जाना पड़ेगा, मेरे बिल्डिंग में कोई ऐसा दोस्त होगा मेरा, उसको तो फिर की पकड़ में पकड़ता हूँ, वही सातवें माले पे टेरेस पे जाके ढूंढना पड़ेगा, माहौल ढूंढना पड़ेगा जहाँ मुझे कोई जानता नहीं ऐसे, ताकि मैं एकदम दिल से पतंग उड़ा सकूं। तो अगर कोई जानते हैं कि कोई आदर करने वाले व्यक्ति बाजू में खड़े हैं तो मैं वो दिल खोल के पतंग नहीं उड़ा सकता, है ना, आप समझ सकते हैं इस बात को, संकोच होगा मुझे, क्यों सब रहे ये देखो देखो सर देखो पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो देख सुन के ही मेरा पतंग उड़ाई दी तू ले यार, मैं खड़ा हो जाता, आप उड़ा लो पतंग, ऐसा हो सकता है ना। तो वो ऐसी जगह बनाते और ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो उसके लायक हैं, जो बहुत क्लोज है उनके, बहुत निकट की भक्त है उनके, उनका ही ज्ञान छीन लेते हैं, उनको लेके आते हैं, फिर वो आते हैं और फिर लीला करते हैं, पेड़ से कूदते हैं, नदी में कूदते हैं, कभी मेंढक बन जाते हैं, कभी इसकी नकल करते हैं, कभी पंछी की नकल करते हैं, कभी पंछी की छाया के पीछे पीछे भागते हैं, पंछी की छाया पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये पतंग उड़ाते हैं। मुझे याद करना बाद में बताऊंगा आपको पतंग की लीला, पतंग लीला भगवान की। तो लेकिन वो सारी फिर भी बहुत सुंदर और उच्च कोटि की जगह हैं, जहां पर वो सबको भुला कर कि मैं भगवान हूं कई प्रकार की लीला करते हैं। कुछ एक जगह गिरिराज को उठा लेते हैं, एक जगह कर गाय चराते हैं, एक जगह राक्षस को मारते हैं, लेकिन बाद में फिर एक जगह आते हैं, वहां पर भी इनमें से सब लोग नहीं आ सकते, कुछ गिने चुने लोग आते हैं, और वहां पर भी राक्षस को मारने का हमारा काम नहीं होता है, केवल प्रेम लीला होती है। जैसे कि आप प्रधानमंत्री को हॉल में मिले और प्रधानमंत्री आपको अपने बेडरूम में लेके गया, तो अंतर है ना उसके अंदर, उसकी प्राइवेट एरिया, वो हर आदमी वहां पर जा सकता नहीं है, पहुंच नहीं सकता वहां पर, लेकिन आपको ले गए तो आप क्या कह सकते हैं, हाँ मैं योग्य था ना उसके, मैं तो क्वालिफाइड था इसलिए मुझे ले गए, वो कुछ तो कुछ देखा होगा ना मुझके मेरे अंदर उसने, इसलिए मुझे हाथ पकड़ के ले गए, मैं भी उसके योग्य था इसलिए मुझे ले गए, नहीं वो क्या बोलेगा, ये तो उनकी कृपा थी, असीम कृपा थी, मैं तो उसका योग्य नहीं था लेकिन वो मुझे अपनी कृपा से अपने अंदर तक ले गए। वैसे हम और आप लोगों को किसी को भी समझना नहीं चाहिए कि हमने टिकट निकाला है, हमने रूम बुकिंग किया है, हमने पहले से फॉर्म भरा था इंटरनेट पे, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमने सब कुछ फॉर्मेलिटी सब सिस्टम फॉलो किया है, हरे कृष्णा, सब सिस्टम फॉलो किया है इसलिए हम आज बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं ये सब कुछ हमने किया है फिर भी बिना राधा रानी की दया से हम यहाँ पर नहीं आ सकते, इनकी असीम कृपा है, कितना होने हमने सब फॉर्म भरा फिर भी उन्होंने कृपा करके हमको बुलाया। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जैसे हमारे डॉक्टर जगमोहन जी, इनकी जगह पर कोई दूसरे आने वाले थे वो नहीं आ पाए, फिर इनको इमरजेंसी कॉल आया और ये बम्बई में ही थे तो और कहीं जाने के बदले में बरसाने में हमारे ट्रेन में बैठ के आ गए। इसको कृपा कहते, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। कौन भगवान के धाम में कब आएगा ये ऊपर तय होता है, पहाड़ पर। पहाड़ पर गए क्या आप, पहाड़ पर राधा रानी बैठी हुई है, मालकिन, वो तय करती है किसका टिकट कैंसिल करवाना है और किसको टिकट देना है किसका रिजर्वेशन कैंसिल करना है, किसका रूम बुकिंग कैंसिल करना है और किसको वो देना है, ये वो तय करती है। हम खाली सोचते हैं कि हमने सब कुछ किया है, अरे हमको जाना ही चाहिए, पहुंचना ही चाहिए वहां पर, लेकिन पहुंचना है कि नहीं है ये वो तय करती है। ऐसा ये धाम है, परमोच्च धाम है, जहां पर जिनके चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए सारे देवता, सारे संत, जितने भी महान आत्माएं हैं वो तड़पते रहते हैं और यहां पर आते हैं उनके चरणों की धूल लेने के लिए, क्योंकि यहीं पर एक जगह ऐसी वृंदावन धाम 84 कोस जहां पर वो नंगे पैर घूमते हैं, बाकी सब जगह पर चप्पल पहन के घूमते हैं। पादत्राण, बड़े सुंदर ऐसा रत्नों से भरे जूते पहनते हो, उनका चरण कमल जो है कभी जमीन पर लगता ही नहीं है ऐसी चीजों पर, जैसे जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, कहीं भी सोते हुए भी उनके चरणों में रत्नों से भरे हुए पादत्राण लगे हुए हैं, आप देखिए बराबर जाके। ऐसे ऐश्वर्य संपन्न भगवान का जीवन है, वो यहां पर चप्पल भी छोड़ देते हैं और नंगे पैर घूमते हैं, तो फिर रज बनते यहां पर उनके चरणों की, और वो रज को प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो जाएंगे तो रज नहीं मिलेगी। इसलिए जब कथा होती है तो जगना चाहिए, और कथा में नींद आती है तो खड़े होना चाहिए, और खड़े होकर भी नींद आती है तो दूसरों को बोलना चाहिए मुझे एक गुलचा लगा दो, ताकि मुझे गुस्सा भी आ जाए तो फिर नींद उड़ जाएगी मेरी। हरे कृष्णा, तो क्या कह रहा था मैं, यहां पर वो रज मिलती है। लेकिन जिनके रज के सब लोग लालायित हैं वो भी एक जगह आते हैं जहां उनको रज चाहिए, और वो ये जगह है जहां पूरा विश्व, पूरा निर्माण भगवान का, पूरा सृजन क्रिएशन, जहां पर भगवान की रज लेने के आते हैं वो भगवान यहां बरसाने में आते हैं, जहां पर राधा रानी की पद रज कर्ण प्राप्त करना चाहते हो। तो यहां पर पहुंचना आसान बात नहीं है, आप उधर वृंदावन पहुंचोगे बाकी बिहारी सब करके आ सकते हो, लेकिन यहां पर पहुंचने के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, और वो एक संत ही दे सकते हैं। राधा रानी की कृपा जो है वो एक संत के माध्यम से ही मिल सकती है। तो सबसे पहले हमारे प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने ये धाम लोगों को परिचय कराया उसका, तो उसके बाद में हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज हैं जो भगवान को ढूंढे ढूंढे यहां पर पहुंच गए थे, कितना कष्ट उठाया उन्होंने। हमने तो अच्छी तरह से एसी ट्रेन में बैठ के आए हम लोग, एसी हो नॉन एसी हो, ठंडे वातावरण में अच्छी तरह से कंबल ओढ़ के नींद से उठे, मुंह धोया, तब तक स्टेशन आया, उतरे, बस तैयार थी हमारे लिए, बस में बैठे, शायद नाश्ता भी रेडीमेड बस में पहुंचा होगा, यहाँ पर आए तो यहाँ पर गर्म गर्म मिला होगा, रूम रेडी तैयार था, सब कुछ रेडी था, फिर हम लोग आए आराम से। वो तो बिना किसी वाहन के ऐसे अंगूठा दिखा के आए, और कहाँ से, बम्बई से मथुरा तक नहीं आए वो इंग्लैंड से भारत में आए पहले, तो वहाँ से हिमालय गए, क्या क्या ढूंढा उन्होंने, फिर नीचे आए, ऐसे ही परम कृपा से ऐसे ही एक बार मथुरा स्टेशन पे उतर गए, वापस चढ़ नहीं पाए है ना, ऐसे ही इतनी हम लोग उतर ना, अपने कैसे विराट में कैसे होता है, आप लोग आपको बोलते हैं आपको उतरना है क्या, नहीं नहीं मुझे नहीं उतरना है, आपको कहाँ उतरना है, मुझे चर्चगेट उतरना है, तो अभी क्या इधर कर रहे हो, तो वो हम जो फिर हम पीछे जाने का कोशिश करते हैं, तो क्या बोलते हैं, अभी पीछे जाने का चांस नहीं, उतर के चढ़ो आप वापस, बोलते हैं ना ऐसे, इतनी भीड़ है, इतने लोगों को उतरना है कि आपको वापस जाने का पीछे चांस नहीं है कि आप उतरो मैं जाता हूं पीछे, बोलेंगे अभी आपको धक्का लेके नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आपको वापस चढ़ना पड़ेगा, दोबारा ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ऐसे ही भीड़ में वो मथुरा स्टेशन में उतर गए थे, उनको पता ही नहीं कौन सा स्टेशन है ये, लेकिन दोबारा चढ़ नहीं पाए, तो फिर पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो ये मथुरा है, ये क्या है, बोलते ये कृष्ण की जन्मभूमि है, तो इतनी भीड़ क्यों है, बोलते आज कृष्ण का जन्मदिन है, सब लोग मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, वैसे ही उतर गए अभी, क्या टिकट तो है नहीं, आगे पता नहीं कहाँ जाना है, चलो चलते हैं, सब चले तो सब जगह खुशियां मना रहे हैं, भगवान का जन्मदिन। तो कहीं दूर जगह पर उनको एक नीले बालक का गाय के साथ चित्र मिला था, तो वैसे चित्र सब दिखने लगे यहां पर उनको, तो उसी का नाम कृष्ण है ये पता चला, और उसी का बर्थडे है, उसी के जन्म स्थान पे पहुंचे हैं। यही भगवान के संत की कृपा है। और फिर वहां बहुत दिन रहे वृंदावन में, फिर किसी संत ने बताया उनको कि आप बरसाने जाओ, यहां की मालकिन वहां रहती है, जहां जहां घूमे ना आप, जिस इस मालिक के पास आप दर्शन करने गए उनकी मालकिन यहां रहती है, वहां जाओ। तो फिर चल के आए। अगर आपको समझे सुबह आज बोला होता कि बस का तो प्रॉमिस किया था, लेकिन बस आज सब स्ट्राइक पे है, अब एक ही रास्ता है आपको चल के जाना है बरसाने सामान लेके, तो क्या हालत होगी आप? हाँ बोलेंगे रिटर्न ट्रेन कौन सा है, देखो चलो मुंबई वापस। ऐसा होता है ना, क्या प्रभु जी इतना सारा करके अभी आप बोले चल के आ जाओ, ये नहीं मुमकिन है हमारे लिए, हम तो बॉम्बे जाएंगे, बस आपका कैंप आप ही करो, देखो क्या करना है, तुम्हारा समस्या तुम्हारे पास। लेकिन इनके लिए तो कोई साधन था ही नहीं, पूरा माइंड प्रिपेयर था, जो ऐसा उंगली दिखा के इंग्लैंड से यहां तक पहुंचे उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो चलते 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 आए, चलते चलते पहाड़ चढ़े, और वो पहाड़ पर आगे दूसरा एक पहाड़ है, एक पहाड़ है दूसरा एक अंदर का एक और एक प्राइवेट पहाड़ है। ये पहाड़ में बहुत लोग पहुंचते हैं, वो पहाड़ में कम लोग पहुंचते हैं। उस पहाड़ पे वो 6 महीना रहे और वहां पर उनको अद्भुत अनुभव हुए भगवान के विषय में, जीवन का लक्ष्य क्या है वहां पर पूरा साक्षात्कार हुआ। और फिर जब रास्ता पता चला, फिर आगे गुरु महाराज की मुलाकात हुई, जीवन का लक्ष्य पता चला, दीक्षा प्राप्त हुई, वो ये धाम है। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकाला, हमको लोगों ने ऐसे फूल की तरह आके यहां बिठा दिया है ना। पहले जो होता है ना, पहले कोई नई जगह ढूंढता है ना, उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत धूप छांव सहन करनी पड़ती है। लेकिन एक बार ढूंढ लिख करके कुछ बनाता है तो आगे के लोग बहुत रॉयल आते हैं वहां पर, एकदम ऐश आराम से आते हैं। वैसे हम लोग हैं, अगर चल के मैं आया होता तो इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहां पर फ्रेश नहीं थोड़ी दिखता आपको। ऐसा थका हुआ कुछ लेते क्यों नहीं, ऐसा दिखता। लेकिन क्यों नहीं, गुरु महाराज ने इतना सुंदर व्यवस्था करके रखा है। पहले तो खुद आए, फिर खुद ने कुछ अच्छे रिश्ते बनाए यहाँ पर, फिर आए फिर हमको लेके आए अच्छी तरह से, हमारा परिचय करा दिया, फिर और कैंप की व्यवस्था कर दिया। फिर एक बार कैंप किया तो लगा ठीक है, एक बार दो बार हो गया, फिर थोड़ा बंद पड़ गया, फिर बाद में ऐसा व्यवस्था कर दिया कि अभी हर साल आना है। फिर बोले हर साल क्यों, हर महीने आ जाओ, तो हर महीने का व्यवस्था कर दिया। फिर बोले हर महीने क्यों आते हो, रोज आ जाओ, तो रोज का व्यवस्था कर दिया, हॉस्पिटल ही खोल दिया इधर, परमानेंट सेवा 2011 से। तो हर बार कभी भी आके सेवा कर सकते हो। ऐसा व्यवस्था जो है ना, वो बार बार आने की और बार बार स्वामिनी के धाम में सेवा करने की ये जो व्यवस्था है, वो कोई संत ही कर सकता है। भगवान के धाम में ऐसी व्यवस्था करने के लिए संत की कृपा ही होनी चाहिए, नहीं तो भगवान का धाम किसी के लिए एंट्री नहीं है इधर। अरे आप लोग इतने आसानी से आए हो यहाँ पर, आराम से बैठकर कथा सुन रहे हो, प्रसाद पाओगे, सेवा करोगे ब्रजवासियों की, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी यहां प्रवेश नहीं है। देखिए हमारे ब्रह्मा जी CEO है ना, इस पूरे ब्रह्मांड के वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे पहले हम लोग दिखते भी नहीं थे उस समय, एक ही जीव थे वो ब्रह्मा जी। ऐसे बड़े व्यक्ति को भी यहां पर आना है तो क्या करना पड़ा उनको, पहले तो 120,000 साल तपस्या करनी पड़ी। पहले 60,000 जब किया ना तपस्या, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। समझो आप आए मथुरा में और 1 घंटा कोई गाड़ी नहीं आया, तो कितना परेशान हो जाएंगे आप। 1 घंटा हो गया जब से आया, अभी नाश्ता भी नहीं किया, रात को सोया भी नहीं हूं, 1 घंटा हो गया ट्रेन आके, अभी तक बस नहीं आया तुम्हारा, कितना हम आग बबूला हो जाएंगे। ये जो 7,000 साल तपस्या किया ताकि वो दर्शन दे हमें, दर्शन ही नहीं मिला, फिर छोड़ के अपना काम पे लगे। फिर 60,000 साल तपस्या किया तब कहीं जाके दर्शन मिला। तो जैसे आप लोग यहां पर, बहुत लोग शायद, मेरी उम्मीद ऐसी है, प्रार्थना भी ऐसी है कि आप लोग कृपा प्राप्त करने के लिए आए होंगे, आना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको, इतना लंबा तपस्या कर रहे हो, बोले मुझे आपके चरणों की रज चाहिए, सबकी, गोपियों की और आपके चरणों की रज चाहिए। अच्छा बोले जाओ ब्रज में जाओ। तो कहते हैं ब्रज कितना बड़ा है, मैं कहाँ जाऊं? तो बोलते वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानुपुर जाऊं। तो गए तो क्या बने यहां पर, वो पत्थर बने पत्थर। और आपको सबको बताया जाए, चलो आ तो गए हो ना अच्छी तरह से, बस बस पकड़ के नाश्ता वाश्ता लंच विंच किया, अभी अभी आपको अभी कल सुबह से पत्थर बनना है, 8 दिन के लिए पत्थर बन के रहना है यहाँ पर। लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे, फिर कुत्ता बिल्ली आके अपना भी काम करेंगे, सब कुछ बंदर आएगा और सब लोग आपके ऊपर जो करना है मर्जी करेंगे, पैर लगे रखेंगे आपके ऊपर, सबके सर के ऊपर पैर रख के चलेंगे 7 दिन के लिए, है मंजूर? नहीं, फिर चले जाओ यहां से। तो आप क्या बोलेंगे, अरे बाप रे, ये तो पता नहीं था पहले टिकट निकालने के समय। तो उनको पत्थर बना दिया भगवान ने, रात भी पत्थर बन के, 7 दिन के लिए नहीं, कई युग बीत गए, आनंद में रह रहे हो, हम जैसे पापी लोग भी चढ़ते हैं उनके ऊपर। तो ब्रह्मा जी की स्थिति यह है, वो यहां पर कृपा प्राप्त करने के लिए पत्थर बने हुए हैं, और भगवान बड़े प्रेम से उनको लीला करते हैं। जब भगवान लीला करते हैं तो वो पिघल जाते हैं, ऐसे मोम की तरह हो जाते हैं, मक्खन की तरह मुलायम हो जाते हैं, ताकि भगवान को पैर में पत्थर का सख्तपन जो है ना, उसका कष्ट ना हो। क्या भाव है देखो आप, इतना बड़ा आदमी है लेकिन कैसे पत्थर बन के बैठा है, और फिर क्या कर रहे हैं, जैसे आते हैं तो एकदम मुलायम हो जाता है, ताकि उनको लगे कि एकदम उसे मखमल पे चल रहे हैं, ऐसी ये जगह है। इसलिए इस जगह पे आना पहुंचना वाला है, हर बहुत मजा आता है वहां पर, ये सोचकर मत आना। जैसे हमारे नर्सिंग विद्यार्थी सब लोग उनको बोलते बड़ा आनंद आया, तो वो पहले सेवा करने के भाव से नहीं आते यहां पर, उनको जो आनंद आपको मिला जो हमको मिलना चाहिए ये सोच कर आते हैं, और यहां पर फिर सेवा करते हैं, उसके बाद में फिर उनको पता चलता है कि ये खुशी जो है ना, ये वैसे वो आइसक्रीम खाने वाले कुल्फी वाले सुखी नहीं, खुशी नहीं है, हाँ जो वड़ा पाव खाने में मिलती है, वो जो उसल पाव खाने में मिलती है, समुद्र में पानी पूरी में मिलती है, वो यहां पर ढूंढने को आएंगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा मिलेगा सेवा करने के बाद में जिसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर आप जाके अगले बैच को बताओगे कि मैं पूरा नहीं बता सकता, आप जाके देखो, आपका टर्न आएगा तब देखो आप। ऐसा ही कुछ यहां पर है, दिव्य आनंद, त्रिगुणातीत आनंद, समझ के बाहर वाला आनंद। इसलिए हमारा ड्यूटी है कि आप लोगों का सेवा शुरू होने के पहले आपको पता कराया जाए कि आप कहां आए हो। कोई कुछ समय का सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आए हो, मजा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए भी नहीं आए हो, आप एक महान प्राप्ति जीवन की करने के लिए यहां पर आए हो। और बहाना बरसाना आई कैंप का है, बहाना इस शिविर का है, लेकिन ये शिविर तो एक बहाना है, राधा रानी की कृपा को पाना है, इसलिए हम लोग यहां पर आए हैं। इसके माध्यम से हम उनके चरणों की रज को प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि जीवन का जो रहस्य है जो स्वयं श्री कृष्ण भी ढूंढ रहे हैं, वो परम रहस्य जो रज के राधा रानी के चरणों में है, वो प्राप्त करने के लिए हम भी आए हैं, और उसका रास्ता कृष्ण ने भी बनाया है हमारे लिए, स्वयं भी आ रहे हैं उस रास्ते से और हमको भी लेके आ रहे हैं। जैसे वो बाबा भी यहां पर कथा बताए थे, उन्होंने बेचारे ने कथा ही छोड़ दिया बीच में, तो उस कथा आगे ऐसी है कि वो जब रानियां पीछे हट गई तो ब्रज में गोपियों ने पानी में पांव डुबा डुबा कर मट्टी में लगा लगा कर रज निकाल निकाल कर दिया उनको। जो रानियों को कहा गया था ना कि नरक की यात्रा होगी आपको, वो पता था उनको भी कैसे होगा, नरक में जाना पड़ेगा, भगवान को अगर हमारे चरणों की रज लग गई तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, ये पता था उनको अनंत काल तक। ये पता होने के बाद भी एक भी क्षण का विचार न करते हुए और विलंब न करते हुए गोपियों ने केवल रज नहीं दिया, पानी में पांव डुबा डुबा कर मट्टी में डुबा डुबा कर ऐसा घिस घिस के निकाल के दिया। तो लेने वाले बोल रहे हैं अरे इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए था, तो बोलते ले लो होलसेल में, आगे भी काम आएगा, फिर दोबारा दर्द होगा तो थोड़ी दोबारा आओगे इतने लंबे, लेकर रखो स्टॉक में, बार बार आना नहीं पड़े और उनको भी उतना समय कष्ट झेलना नहीं पड़े, जब तक आओगे हम बोलेंगे कि भाई दवा खत्म हो गई है, अगली दवा तो अभी कहां से लाना है, तो अमेरिका में आती है दवा, तो आप ऑर्डर करेंगे, फिर अमेरिका से आएगा तो एक महीना जाएगा, तब तक तो दवाई का ना होते हुए दर्द होगा कि नहीं होगा आपको? तो बोले आप तो द्वारका से मथुरा से कहीं आओगे, कितना समय लगेगा आपको, इसलिए ले जाओ अभी एक ही बार ले जाओ, हम सब लोगों की ले लो, सब लोग फाइटिंग कर रहे हैं, मेरा भी लो, मेरा भी लो, मेरा भी लो। और यहां पर रानिया जो बोल रहे क्या करूं, बोलो क्या करूं, उनको बोला तभी तो पीछे 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 हट रहे सब रानिया, यहां पर सब लोग आगे आगे आकर झगड़ा कर रहे हैं, मेरा भी लो, मेरा भी लो, मेरा भी लो। हम भक्त है भी नहीं, वो छोड़ो उसको, हम उनको मानते हैं और ले लो आप। तब वो व्यक्ति, हमने सुना था नारद मुनि है, इन्होंने कहा था उद्धव जी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, जब वो लेकर आए तो ऐसा सर पे ऐसा बड़ा बोझ लेकर आए। सिद्धार्थ उनको पूछते भगवान ने क्या लेकर आए, बोलते थोड़ा मांगा था तो इतना दे दिया उन्होंने। तो फिर बताया स्टोरी सब, उन्होंने कैसे दिया वो, तो बोले कि मैंने उनको बताया कि तुम लोगों को पता है क्या तुम लोग क्या करने जा रहे हो, आप लोग जो करने जा रहे हो उसका परिणाम अनंत काल तक, चिरंतन काल तक नरक की यातना है, पता है क्या आपको? तो बोले हाँ पता है, फिर भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो वो गोपियां कहती हैं कि हमारे चरणों की रज का स्पर्श होने से उनका सर दर्द अगर कुछ क्षणों के लिए भी कम हो जाए, क्योर होने की बात नहीं कर रहे हैं, सर दर्द मिटने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सर दर्द में कुछ अंश तक भी परिणाम कम होता है तो हम लोग उसके लिए उनके कुछ क्षण के राहत के लिए भी हम अनंत काल तक नरक की यातना भोगने को तैयार है, आप ले तो जाओ, समय बर्बाद मत करो अभी डिस्कस करने के लिए, ले जाओ। जब ये नारद मुनि बता रहे हैं उनको, तो भगवान सुन उनको रहे हैं, देख अपनी रानियों को रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार पूछा था उनको कि ऐसी क्या चीज है जो आप दिन रात उनकी याद करते रहते हैं, हम तो एक नहीं 16108 हैं और तत्पर हैं, क्या चाहिए आपको, क्या करें आपके लिए, दिलो जान से हाजिर हैं, हमारे इतने सारे नंबर में होने के बावजूद भी आप दिन में कभी रात में कभी बीच में कभी इधर कभी उधर उन गोपियों के नाम लेकर रोते रहते हो, क्या ऐसी क्या चीज है उनके अंदर? तब भगवान ने कहा था कि एक दिन आपको बताएंगे, तो वो ये दिन था जब वो कोई और बता रहा है और वो उनकी ओर देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, यही कारण है उसका, जिसके लिए आप पीछे हटे थे उसके लिए झगड़ा करके आगे आ रहे थे, उसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार थे। तो ऐसे लोगों का ये धाम है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं। तो आप कहेंगे अभी तो नहीं है ना ये लोग, सब लोग अभी तो सब लोग चले गए भगवान के साथ में लीला करके अपने अपने धाम चले गए, अभी कौन है यहां पर, अभी तो ऐसे गंवार अनपढ़ लोग जो गाली देते हैं और रिक्शा में चीटिंग करते हैं और वो क्या क्या करते रहते हैं, अभी क्या है यहां पर? आज भी वही जन्म लेता है जो इसके लायक है यहां पर रहने की, वो आपको दिखेगा अनपढ़, सुंदर दिखेगा नहीं, काला दिखेगा, बहुत गंवार दिखेगा, गरीब भी दिखेगा, जिसको आमतौर पर हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग रिस्पेक्ट किसको करते हैं? सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं जिसके पास पैसा है, पूछ के देखो अपने हृदय में, सबसे पहले हम आदर करते हैं, बड़ा पैसे वाला है तो हमारा सर अपने आप झुक जाता है, उसके बाद बहुत कोई सुंदर है तो अपने आप झुक जाता है, उसके बाद बहुत कोई पढ़ा लिखा है अपने आप सर झुक जाता है हमारा। लेकिन ये लोग के पास ना पैसा है ना विद्या है ना कल्चर है ना कुछ है, क्योंकि जब ये होता है ना पैसा विद्या सुंदरता तो उसका बहुत गर्व होता है। तो यहां पर राधा रानी उनको जन्म देती है जिनको इसकी इच्छा भी नहीं है, गर्व होने की तो बाद वाली बात है ना, प्राप्त होने के बाद गर्व होगा आपको, लेकिन वो प्राप्त होने की इच्छा ही नहीं जिनको, उनको यहां पर जन्म देते हैं वो, जो उनके बहुत प्रेमी हैं, जो उनको बड़ा प्रेम करते हैं, कई जन्मों तक उन्होंने पुण्य किया है, ऐसे लोगों को यहां जन्म देते हैं और जानबूझ के उनको कुरूप और गरीब और अनपढ़ ऐसे रूप में रखते हैं। आपको भी भ्रम होगा, ये लोग है, ये लोग है क्या भगवान के भक्त, क्या इनमें तो चेहरे पे तेज नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है क्या इनके अंदर? हमने सुना था कि जब कोई संत बनता है तो उसके चेहरे में बड़ा तेज आता है, उसको देख के ही भगवान की प्रेरणा हो जाती है। इनके चेहरे में तो कुछ भी नहीं, सौंदर्य बिंदर कुछ है ही नहीं, ना कुछ ज्ञान है कुछ है, खाली ऐसी कड़क कड़क बातें करते रहते जोर जोर से। लेकिन ये भी यहाँ का रहस्य, आप यहाँ के बाहर जाओगे ना तो आपको सारे संत ऐसे बहुत तेज वाले, बहुत तेज पुंज ऐसे मिलेंगे, देख के उनकी आंखों में इतनी रोशनी होगी। तो यहाँ के उनसे भी महान जो संत संत जैसे लोग हैं ना, यहाँ पर ऐसे आपको गवाड़ अनपढ़ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ये जगह की महात्मा ही यही है कि यहां पर जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, अलग ही होता है कुछ। तो इसलिए यहां पर आके वो गलती नहीं करनी चाहिए, अरे बेचारे गरीब पेशेंट है, देखो पैसा भी नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हमने पैसा इकट्ठा करके लाया है, हम उन पर उपकार करने जा रहे हैं, इतना बड़ा उपकार करेंगे जो कल तक अंधे थे आज से उनको दृष्टि मिलेगी, हमारे वजह से मिलेगी, हम लोग इतने दूर से आए, छुट्टी लेकर आए, अपने खर्चे से आए और निरपेक्ष भावना से यहां पर उनको अभी सेवा करने वाले हैं जिसके द्वारा उनको रोशनी मिलेगी, इतना बड़ा कार्य हम करने आए हैं, विचारों पर उपकार करने आए हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ये सोचना ना बहुत बड़ी भूल, बड़े क्या बोलते हैं ना, घोड़चूक बोलते हैं मराठी में, बहुत बड़ी गलती होगी अगर ऐसा सोच के आप आते होंगे तो। वास्तव तो ये है कि इनके ऑपरेशन का बहाना है, लेकिन हमारी आंख खोलने के लिए हम लोग यहां पर आए, हमारे जो बंद आंख है खुली होने पर भी बंद है, कुछ आंखें बंद होने पर बंद होती है, भाई दृष्टि नहीं उनके पास, क्या करें, कॉर्निया ही है या तो कैटरेक्ट है या तो कोई पर्दा खराब है उसके पीछे का। लेकिन हमारी आंखें अच्छी होने पर भी अंधे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कौन है, जो खुद को नहीं पहचानता है। मैं आईने में खड़ा किया और आपको बोला आप कौन हो, बोला मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, या तो बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं, आदमी हूं, औरत हूं, इंडियन हूं, तो भी एक भूलभुलैया है ना, जो आप नहीं हो आप बोल रहे हो कि मैं हूं, असलियत की पहचान ही नहीं है। तो वो हम कौन है इसकी पहचान कराने के लिए ये आई कैम का बहाना है, ताकि हम अपने आप को पहचाने कि हम भगवान के अंश हैं। ये हमारा जो अज्ञान का मोतीबिंदु है वो निकालने के लिए हम उनका मोतीबिंदु के ऑपरेशन का बहाना बनाकर आए हैं, ताकि हमको वो कृपा प्राप्त हो जाए जो उनको कई जन्मों से या इस जन्म में पूरी भरपूर रूप में प्राप्त हो गई है। ऐसे कृपा प्राप्त लोगों के चरणों की सेवा करके, आंखों की सेवा करके हम अपने पहचान को समझने के लिए और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यहां पर आए। इसलिए किसी भी मरीज को आप यहां पर सामान्य व्यक्ति मत समझना। राधा रानी अपने प्रिय भक्तों को आपके पास आपकी आंख खोलने के लिए अंधा बनाकर भेज रही है, ताकि उनकी बाहरी आंखों का इलाज करते करते आपके अंतर चक्षु जो है ना वो खुल जाएं। तो नंबर वन, इसमें ओरिएंटेशन भी है, नंबर वन आपके पास आने वाले लोगों को सामान्य मत समझना और सामान्य समझकर अपराध नहीं करना उनका, उनको दुख नहीं पहुंचाना। और ऐसे महान लोगों की सेवा करने के लिए जो लोग यहां पर आए हैं उनको भी सामान्य मत समझना, अपने आप को सामान्य समझना, लेकिन जो बाकी लोग आए हैं उनको सामान्य मत समझना, क्योंकि वो भी कुछ समय के लिए ब्रजवासी हैं जो ब्रज का वास कर रहे हैं, कुछ लोग परमानेंट जन्म से ब्रजवासी यहां पर हैं और आप लोग कुछ सब कुछ समय के लिए ब्रजवास कर रहे हैं, तो आप भी ब्रजवासी हैं, तो जितना आदर उनका करेंगे उतने आदर साथ वालों को भी करना। ये संबंध नहीं, अरे ये तो बंबई के लोग हैं, कई घटिया लोग हैं, सब पाप करते मुंबई में रहते हुए भोग में लगे रहते हैं, ये लोग बहुत महान है। नहीं, यहां पर पहुंचने वाला व्यक्ति भी बहुत भाग्यवान है, पहुंच ही सकता नहीं वो उनकी कृपा बिना, उनकी कृपा बिना ये लोग यहां जन्म ले सकते नहीं है, उनकी कृपा बिना आप लोग आ सकते नहीं है, और आप आ गए हो तो उनकी कृपा है, इसका प्रमाण है ये, तो सबका आदर करके रहना है। और जैसे आपके पास रेडियो है, रेडियो कितने लोगों का रेडियो है घर पे, सब मोबाइल में है सर, रेडियो की जरूरत क्या है। वो हमारे पास रेडियो होता था पहले, बड़ा ऐसा बुश का, उसमें एक बैंड होता था, उसके बाद एक फाइन ट्यूनिंग होता था, दो दो छोटा बड़ा, बड़े से फास्ट घूमता है, छोटे से बहुत घुमाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा घूमता है, अरे होता है टक 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 टक, फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड शॉर्ट वेव 1-2 मीडियम वेव 1-2 FM AM AW होता है, एकदम अलग कर देगा। सब हम लोग करते थे, जैसे मैच चल रही है ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग टक 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 ऑस्ट्रेलिया। तो रेडियो में क्या होता है कि जो आपको सुनना है काटा आपका वही आना चाहिए उस नंबर पे, तो आपको वहां की आवाज सुनाई पड़ेगी, नहीं तो फिर सुनने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की मैच और सुनाई पड़ रहा है बिना का गीत वाला सिलोन से, क्योंकि ट्यूनिंग आपका अलग हो गया है, कहीं अलग जगह पर ट्यून किया आपने। सब गड़बड़ उधर ही है प्रभु, दुनिया में सब गड़बड़ इधर ही है, गलत ट्यूनिंग करके बैठे हैं और सही चीज सुनना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जीवन का। बनना है डॉक्टर और गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसा वो डॉक्टर बनेगा क्या? वो नहीं बन सकता ना। खाना खाने गया था जलेबी, लेकिन पहुंच गया फरसान के दुकान पे, तो जलेबी कैसे मिलेगी? यही हमारा प्रॉब्लम है। तो सेकंड चीज है ट्यूनिंग, कि धाम में रहकर भी आप धाम के बाहर रह सकते हो। क्या हो रहा है बंबई में, पता नहीं शेयर मार्केट गिर गया कि चढ़ गया, मैंने अभी कल इन्वेस्ट किया था और आज सुन रहा हूं शेयर मार्केट गिर गया, तो मेरा 500 रुपए का बोलते 10 रुपए हो गया आज। ऐसे सोच बैठेंगे यहां पर तो आप यहां नहीं हो। सोचे अरे मेरी सहेली कॉलेज में आज बोलते पिक्चर था कोई, सब पूरा क्लास पिक्चर देखने गया, मैं इधर क्या कर रही हूं? तो आप इधर नहीं हो, आप उधर ही हो, जहां आपका मन है वही हो आप, शरीर चाहे किधर भी हो। तो मन को यहां लाने के लिए पहले इच्छा करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और मन को लेके आया तो मन को पूरी यहां की म्यूजिक सुननी चाहिए ना, यहां पर जिस सुनने को आए हैं, जो अनुभव करने आए, वो पूरा अनुभव करने के लिए ट्यूनिंग करना पड़ेगा आपको। ट्यूनिंग उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, तभी ट्यूनिंग होता है। क्या क्या नियम है बताइए? यहां वहां भटकना नहीं है नजारा देखने के लिए, अरे नई जगह पे आए देखेंगे क्या क्या है, शॉप में क्या मिलता है, किधर क्या मिलता है, किधर क्या है, कौन सी हवा कहां बह रही है। यहां पर सेवा है ना, वही ट्यूनिंग है। वो सेवा में ही राधा रानी की कृपा छुपी हुई है। और मार्केट में जहां पर मलाई बर्फी मिल रही है वहां पर वो कृपा नहीं है, जो सेवा है ना। कल ही हमने भागवतम में सुना था कि सेवा के माध्यम से ही भगवान की ट्यूनिंग हो सकती है। और सेवा नहीं रहेगी, समझो आप 10 घंटा सेवा करते हो, 2 घंटा टाइम पास करते हो, तो वो 2 घंटे के लिए आप डिसकनेक्ट हो जाते हो। जो प्राप्त करने के लिए आए, जो प्राप्त भी किया लेकिन जैसे छोड़ दिया वैसे आप जुदा हो जाते हो। अगर निरंतर रहना है तो निरंतर सेवा में रहना होगा आपको। जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हो, बीच में सो गए तो क्या हुआ, बीच में कथा आपको मिस हो जाएगी, फिर उठेंगे बोले ए, क्या हुआ बाद में, क्या हुआ बाद में, क्या हुआ वो क्या बोला प्रभु जी ने, आप लोग हंसेंगे बीच में, क्या कुछ क्या जोक बोला प्रभु जी ने, है ना। क्योंकि लोग हंसेंगे तो आप नींद आप उड़ जाएगी, अब देखेंगे लोग हंस क्यों रहे हैं तो पूछेंगे क्या बोला क्या बोला, बोले अभी नहीं बाद में बोलता, अभी वो आगे कथा चलेगी बाद में बताता हूं, मिस हो गया ना आपका। वैसे ही अगर आपका सेवा भाव बीच में नष्ट होकर कहीं मन भटक गया तो डिस्कनेक्ट हो गया, कृपा का जो अखंडता थी वो नष्ट हो गई आपकी। इसलिए सेवा में रहो, यहां वहां मत भटको, जो प्लानिंग बनाया गया है, जो बताया गया है उसमें रहो। नियम तोड़ के कभी भी किसी को कृपा प्राप्त नहीं होती है। आपको लगता होगा मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत सब लोगों को सब कुछ करके उल्लू बना के मैं कहीं जाके आऊंगी या आऊंगा, ऐसा कुछ तो सोचते हैं कि हम लोग ना दिन में सेवा करेंगे और रात में छुपके से जाके गोवर्धन परिक्रमा करके आएंगे, किसको पता भी चलेगा नहीं, ड्यूटी में बड़ा खाचर हो जाएंगे और ड्यूटी में फिर झपकी लेंगे ऐसे ना। क्या हुआ रात को सोए नहीं क्या? हाँ वो नींद नहीं हुई रात को। क्या रूम में नहीं थे? नहीं नहीं वो सोए थे लेकिन नींद नहीं आ रहा था। ऐसा आप उल्लू बनाते रहेंगे तो क्या होगा, जो सेवा करने आए थे और जिस सेवा के माध्यम से कृपा मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि सेवा के समय आप सो रहे हैं ना, नींद आ रही है आपको, थक गए हुए तो सेवा नहीं हो पा रही है। तो आपको लगा मैंने बहुत महान कार्य किया, गोवर्धन की परिक्रमा किया, वो ऐसे करने से कृपा नहीं होती है। कृपा तब होती है जब सेवा वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में होती है, संतों के मार्गदर्शन में सेवा होती है ना, उसी को सर्टिफाई किया जाता है। मन गड़न सेवा करेंगे तो नहीं होता है। पापा के पास जाएंगे बोले पापा आज मुझे आपका पाव दबाना है, मैंने वहां आपके पाव दबाने की सेवा करनी है। पापा बोल रहे प्यास लग रही मुझे पानी दो, बोले नहीं मुझे आपके आप पाव दबाने की सेवा करनी है, मैंने सुना है कि पाव दबाना सबसे बड़ी सेवा है। आपको समझ में आ रहा है? एकदम आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब सेवा है और वो बताई गई है कि मुझे प्यास लग रही है मुझे पानी पिला दो, तो वो कह रहा है कि मैं चरण दबाऊंगा आपकी, या तो वो कह रहा है कि मुझे प्यास लग रही है पानी पिलाओ, तो वो आपको दूध का ग्लास लेके देगा, बोले दूध बहुत बढ़िया है केसर का मिला हुआ, इसको पियो आप। बोले बेटा मुझे अभी मत दो, मुझे पानी दो, प्यास लग रही है पहले। इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति की संतुष्टि तब होगी जब वो जो चाह रहा है वो आप करेंगे, तो आपको उसकी संतुष्टि प्राप्त होगी जिसके लिए आप वो सेवा करना चाहते हैं। अभी वो चरण दबाने क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि चरण दबाने से वो संतुष्ट हो जाएंगे, ये उसके कंसेप्शन है। लेकिन सेवा हमारे कंसेप्शन से, हमारे विचार से नहीं की जाती। सेवा जिनकी सेवा करने वाले हो उनको क्या चाहिए, उस कंसेप्ट से, उस विचार से सेवा की जाती है। हम लोग नहीं तय करते हैं, जो सेवा चाहिए ना, जरूरत है, उसके अनुसार दी जाती है। नहीं नहीं मुझे वही करना है, मुझे अभी ये सब छोड़ना है, ऑपरेशन थिएटर में मुझे बैठ के भगवान के सामने कीर्तन की सेवा करनी है। बोले सुना कीर्तन की सेवा बहुत बहुत सुंदर सेवा है। तो दी हुई सेवा छोड़कर यहां बैठेंगे तो आपको कृपा नहीं मिलने वाली है। और जो कीर्तन कर रहे हैं बोल रहे हम लोग क्या बैठ के पेट बाजा बजा रहे हैं, वो सही सेवा तो उधर किचन, उधर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चल रही है, सब उसके लिए तो आ रहे हैं। इधर मरीज भी वहीं पहुंच रहे हैं, इधर कोई आ रहे हैं कीर्तन सुनने के लिए, ऐसा ही सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि क्या ये ब्लड ये सब काटना पुटना वो टाका लगाना, रियल सेवा तो भगवान नाम की है, तो दोनों को कृपा नहीं मिलेगी। समझ में आपको आया, जो दिया गया है वही दिलो जान से करना, उसमें कृपा निहित है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, दुनिया में सबसे बड़ी डिफिकल्टी पता है क्या है, ओबीडियंस। किसी को किसी की आज्ञा पालन करने की इच्छा नहीं, नोबडी वांट्स टू फॉलो एनीबडी, सबको बॉस बनना है। और एक तो मन मर्जी करना है, और ये भी लगता है कि मैं जो चाहता हूं वही दूसरा लोग करे मेरे मन की इच्छा की तरह। एक मुझे मेरी मर्जी से करना है, और ये भी इच्छा है कि दूसरे भी मेरी मर्जी के अनुसार काम करते रहे। दिस इज द वर्ल्ड। और स्पिरिचुअल लाइफ एकदम उल्टा है, मुझे मेरे मन से तो कुछ करना नहीं है, और करना वही है जो मुझे वरिष्ठ भक्त बताते हैं वही मुझे करना है। एकदम उल्टा, अपने स्वभाव के एकदम उल्टा, अपने अहंकार के एकदम उल्टा, क्योंकि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ एकदम उल्टा है एक दूसरे के। और ये स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है, यहां पर आके सेवा करना। तो आज्ञा पालन जो करता है ना उसकी कृपा प्राप्त होती है। चाहे वो उठी ना अपनी सुखी दुखी दुखी देवी, श्रीवास ठाकुर के घर में खाली पानी के घड़े भर के लेके आते थे गंगा से, वो देती थी, पता नहीं पानी का क्या कर रहे हैं मालूम नहीं उसको, क्या स्नान कर रहे हैं कि भगवान को स्नान करा रहे हैं कि खाना बना रहे हैं कि क्या टॉयलेट में यूज कर रहे हैं, उसको पता नहीं। उसका काम था दुखी गंगा जी से पानी लेके आना, खत्म हो गया जाओ दोबारा लेके आओ, अभी भी खत्म हो गया दोबारा जाके लेके आओ, दिन भर वही करती थी। सबसे पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया, श्रीवास वो दुखी को बुलाओ। और सबसे पहले जो महान कृपा थी शत प्रहरी लीला की, जो 21 घंटा भगवान ने चलाई, उसके सबसे पहले कृपा पात्र थी वो दुखी, जो एकदम अनपढ़ गवार शुद्राणी थी वो। भगवान ने कहा आज से आपका नाम सुखी, और उसे गदगद हो गई वो, बोलो कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अश्रु बहाओ प्रेम के, उसके आंखों से अश्रु बहने लगी प्रेम से, उत्कट आनंद का अनुभव हुआ, भगवान ने पूरा कृपा प्रेम भक्ति उसके हृदय में ठोस ठोस के भर दिया। क्योंकि वो कभी भी उन्होंने पूछा नहीं, श्रीवास जी कितनी बार बोलेंगे, 100 मटके तो लेके आ चुके, अभी आप बोल रहे और लेके आओ, क्या है ये, ऐसा कभी बोला नहीं उसने, कभी क्वेश्चन नहीं किया। मालिनी माता जी क्या चल रहा है, मैं भी इंसान हूं, पति को जरा बोलो कितनी बार बोलते पानी लेके आने के लिए, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। बस वो संत थे, महान बोलते थे, उसको फॉलो करते थे। कितना बड़ा अर्थ है इसमें, जो बोला वो किया जाना, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है जीवन की, ऐसी मनोवृत्ति प्राप्त करना। नहीं तो हमारे जीवन में क्या, हम लोग हर चीज को आर्गुमेंट करते हैं, मम्मी कुछ बोले आर्गुमेंट, पापा बोले आर्गुमेंट, स्कूल में कुछ बोले टीचर आर्गुमेंट, जो बोला जाए वहां आर्गुमेंट, हमको करना ही नहीं, हमको केवल अपनी मर्जी से करना है। और आप अगर मेरे मर्जी से कुछ बोलेंगे तो फिर भी मैंने करना ही करूंगा, क्योंकि आप बोला ना फिर नहीं करूंगा, मेरे मर्जी में था वो, और वही आप बोल रहे मैं वो नहीं करूंगा, वो करूंगा जो आपके बोलने के उल्टा हो। देखो बच्चे कैसे होते हैं ना, बराबर उल्टा ही बात करेंगे मम्मी पापा के बोलने के बाद। बस उनका केवल एक ही है, विद्रोह, रेबेलियस, बस जो बोला गया उसको खंडन करने का, नहीं करने का उसको। और केवल बच्चों का नहीं, हमारा भी यही है, अंदर से हमारा यही प्रवृत्ति है, मना करो बस, खुद की मर्जी में जो है, जब मर्जी है तब करो, ऐसी जिंदगी जियो, ये हमारा मनोवृत्ति लेकर हम लोग यहां पर आए हैं, इसलिए दुख भोग रहे, धक्के खा रहे हैं। इससे बाहर निकलना है तो फिर ये सब करना पड़ेगा, ओबीडियंस। और वो सब करते हुए एक हमारा, जैसे अभी मैं बैठा हूं प्रवचन करने के लिए, तो मुझे एकदम ऐसा शॉर्ट जीन्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहन के, ऐसा कान में एक रिंग पहन के, ऐसा ऐसे बाल पहन के, अगर मैं वही बात कर रहा हूं जो आपको बता रहा हूं एक घंटे से, तो आपको ऐसा लगेगा वाह क्या बात कर रहे हैं, कौन है वो, नहीं है ऐसा बोलेंगे आप, नहीं है। लेकिन शायद धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, मैंने माला भी पहनाया, शायद आपको लगता होगा हाँ इससे सुन सकते हैं, तो ड्रेस कोड भी है ना कुछ, ऐसा राइफल लेके जवान का ड्रेस पहन के मैं कथा कर सकता हूँ क्या, मतलब कर सकता हूँ मैं, लेकिन आप सुन नहीं सकते हो, बोले कब गोली चलाएगा बालों ने, गोली छूट गई तो पता नहीं कहाँ लगेगी, है ना, वे ऐसे करेगा वैसे करेगा, छूट ठॉक करेगा तो पता नहीं किसको लगेगी, वो डर के अंदर रहेगी, कुछ बोलेगा सुना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। मैं आपको एक छोटी सी जोक बताता हूं, एक कथा में ऐसे लंबे दाढ़ी वाले एक महाराज कथा कर रहे थे, हाँ, और भगवान की कथा बड़े प्रेम से कर रहे थे वो, तो एक व्यक्ति सामने बैठ कर रो रहा था कॉन्टिन्यूसली, और उसको देखकर इनको इतना प्रेरणा हो रही थी कि वाह मेरी कथा सुन के रो रहा है वो, मेरी कथा में कुछ ना कुछ है ऐसा, इतना कुछ सब्सटेंस होगा कि बेचारा पिघल रहा है उसका हृदय, तो उसको और उत्साह आ रहा था, तो और कथा बोला तो और रो रहा था वो, तो कैसे भी करके कथा समाप्त हो गई, तो उसको इतनी उत्सुकता थी कि भाई कौन है कौन ये महान भक्त इतना मेरी कथा में रोया, तो गए उनके पास और पूछा कि भाई क्यों रोया तुम, क्या ऐसी मेरी कथा में आपको बात अच्छी लगी जिसको देख के आपने आंसू बहे आपके, तो बोलता है कि मेरा एक बोकर था, उसकी दाढ़ी आपके जैसी थी, तो उसका कल देहांत हो गया, तो आपको देख के मेरे मरे हुए बोकर की याद आ रही थी, बार बार मुझे उसकी याद आ रही थी आपको देख के, जिस तरह से आप हिलते थे तो उसकी भी दाढ़ी ऐसी हिलती थी, तो बार बार मुझे उस बकरी के इतना प्रेम था कि मैं वो रो रहा था। समझ में आपको आया इस कथा का सार क्या है, कि हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, किसी को अपने बॉयफ्रेंड की याद आती होगी, ये तो इनका प्रभु जी का चेहरा मेरे बॉयफ्रेंड की तरह है, किसी को होता लगता रहेगा कि मेरे जो गुजरे हुए पिताजी उनके जैसा चेहरा है इनका, कुछ भी याद आ सकता है आपको, भगवान का विषय छोड़कर आपको कुछ भी याद आ सकता है, एनीथिंग। जहां ये प्रभु जी जोक भी ऐसा करते हैं, वो जो कॉमेडी था ना बहुत बड़ा, वो उसका जैसा भी हंसाते हैं प्रभु जी बहुत, तो शायद वो आप अच्छा लगता होगा आपको, लेकिन जब तक इस कथा में से भगवान का प्रेम का विषय आपको नहीं अच्छा लगता है, तब तक ये कथा भी व्यर्थ है आपके लिए, चाहे वो सुपर पराकोटे की कथा भी क्यों ना करूं, जब तक आपका पात्र सही नहीं रहेगा, रेडी नहीं रहेगा, या तो आपका पात्र गहरी नींद का रहेगा तो भी काम नहीं आएगा। समझे, आप सो रहे हो, मैं आपको अमृत दे रहा हूं और आप सो रहे हो, तो अमृत का काम आएगा आपको, नहीं आएगा। इस तरह से एक डेकोर है हमारा, एक क्या कहते हैं वातावरण है, जिसके अंदर आप ट्यून करेंगे ना तो ये आपको इसका सब लाभ मिलेगा, तो ये ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। और वो ऐसा आप क्या बोलते हैं रेडियो में, स्टे ट्यून्ड, है ना, अभी आप ट्यून्ड हो लेकिन ट्यून्ड भी रहो, अगला प्रोग्राम आने वाला है, बीच एक ब्रेक के बाद आएगा दूसरा कार्यक्रम, ऐसा होता है ना, बोलते हैं स्टे ट्यून्ड, कॉन्स्टेंटली बोलते हैं स्टे ट्यून्ड, मतलब क्या, अगर आप ट्यून्ड रहेंगे तो आगे भी सुनेंगे और आगे भी आपको मैसेज मिलते रहेंगे, लेकिन ट्यून नहीं रहेंगे डिस्चार्ज हो जाएगा मोबाइल आपका, तो फिर इनका मोबाइल नहीं आएगा वापस, मैसेज नहीं आएगा कि 5 और 6 नंबर पे आपका गाड़ी खड़ा है, मथुरा उतरने के बाद डिस्चार्ज हो गया तो मैसेज नहीं मिलेगा, फिर आप 5 के बदले में 1 पे जाओगे, ढूंढते होंगे बस किधर है, बस किधर है, बस किधर है, और 5 और 6 से बस निकल जाएगी, मथुरा भी परेशान पहुंच भी जाएगी, लोग जाके ब्रेकफास्ट भी खा लेंगे, तभी भी आप बस ही ढूंढ रहे उधर, क्योंकि ऐन मौके पर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और उनका जो मैसेज आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए स्टे ट्यून्ड, उसके लिए क्या करना चाहिए, सेवा भाव, आज्ञा पालन करने का भाव, भगवान के नाम का जप, समय पर आना, किसी का अपराध नहीं करना, ना ब्रजवासी का ना साथ में काम करने वाले का, और गंदगी नहीं फैलाना, ये जानकर कि ये भगवान का धाम है, भगवान के शरीर के समान है। इस पर तो हम चल तो रहे ही हैं, यहाँ पर तो हवा में उड़ सकते, तो कम से कम हवा में उड़ने का कला होती तो मैं हवा से ही उठता, पैर रखता ही नहीं इस भूमि पर, कितना पापी पैर क्यों रखूं इसके अंदर। लेकिन वो कला मेरे पास नहीं है तो मेरे को चलना पड़ रहा है, वैसे भी मेरा गंदा पैर रख चल रहा हूं, तो कम से कम जहां पर रह रहा हूं, जहां पर चल रहा हूं, और गंदगी नहीं होने दूंगा मेरे तरफ से। स्नान तो करना ही पड़ रहा है, सुबह ब्रश भी करना पड़ रहा है और लैट्रिन में जाना पड़ रहा है, उतना तो मैल में डाल ही रहा हूं इधर, लेकिन उसके आगे और कुछ डालूंगा नहीं। और जहां काम कर रहा हूं सब राधा रानी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था, सब ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, ऑपरेशन के ऑपरेटर्स, जितने भी क्या औजार है, हाँ इक्विपमेंट्स है, वो सब राधा रानी की शक्ति है, वो उनकी दी हुई कृपा है, उनकी कृपा मूल्यवान है, उनको संभाल कर रखना आगे सेवा में आने के लिए, सब वस्तुओं का ध्यान रखना जो जो हमको दी गई है, गाने वालों को बाजा दिया है, ऑपरेशन वालों को स्कैल्पेल दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं 19 इंस्ट्रूमेंट, 2-2 लाख कीमत होती है एक सेट की, हाँ इतने से कुछ ग्राम के इंस्ट्रूमेंट्स कई हजारों के होते हैं, और इतना बड़ा बाजा भी कुछ हजारों का होता है, वो सब चीज़ ये माइक्रोफोन है, ये रिकॉर्डर है, वो स्पीकर है, हर चीज़ राधा रानी की शक्ति है, उन्होंने दी हुई है, उसको संभाल कर देखना, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई खराब तो नहीं हो रहा है, उसका ध्यान रखना, मेंटेन रखना कि सेवा में आते रहे, ये बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है समय पर आना, क्योंकि हमारा काम मेडिकल है, हमारे लोग वेट करते हैं कि ये लोग आएंगे तो कुछ समय बाद दृष्टि मिलेगी, लेकिन ये 3 घंटा लेट आएंगे तो 3 घंटे बाद दृष्टि मिलेगी, है ना, हो सकता है ना। हमारा पेशा जो है ना बहुत क्या कहते हैं, बहुत डेलिकेट पेशा है, समय पर नहीं आएगा तो पता नहीं उसका क्या होगा, जान भी जा सकती है, वैसे अस्पताल में नहीं होता है, लेकिन फिर भी समय पर जो आता है उसकी भगवान भी कदर करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान समय है, एक रूप उनका समय का है, कालोस्मी। और जो समय का आदर नहीं करता है उसको समय का दुष्परिणाम देखना ही पड़ेगा और भोगना ही पड़ेगा, समय का जो आदर करता है उसको समय का सुपरिणाम आनंद लेने को मिलेगा। आपको समझ में आया, इफ यू रिस्पेक्ट टाइम यू गेट द मर्सी ऑफ टाइम एंड बेनिफिट ऑफ टाइम, इफ यू डिसरिस्पेक्ट टाइम एंड द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ टाइम वील हैव टू एक्सपीरियंस। और समय का सबसे बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है कि वो आप में से जो भी आपके पास है, आपको लगता है मेरे पास है, बुद्धि है, विचार है, शरीर है, अच्छा सशक्त शरीर है, जो भी कुछ है, सौंदर्य है, पैसा है, विद्या है, जो भी आपको लगता है आपके पास है, वो सब समय आपसे छीन लेगा, आपकी याददाश्त भी आपसे छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपकी विद्या छीन लेगा, आपका आरोग्य, आपकी शक्ति, आपका यौवन सब छीन लेगा आपसे। ये समय का एक रौद्र स्वरूप है, जो समय का आदर नहीं करता है। तो आप बोलेंगे हम भक्त बनेंगे तो बुढ़े नहीं होंगे, बुढ़े होंगे लेकिन एक चिरंतन जीवन जीने के लिए बुढ़े होंगे, मरेंगे निश्चित रूप से लेकिन एक चिरंतन जीवन जो समय के परे होगा ऐसे दिव्य जीवन जीने के लिए मरेंगे, दोबारा आने के लिए नहीं मरेंगे। ये समय का एक परिणाम, दुष्परिणाम ये है दोबारा आएंगे, और सब परिणाम ये है कि हम नहीं आएंगे लौट के। दिखता वही है, बुढ़ापा हो रहा है, बुढ़े हो रहे हैं सब लोग, हो रहे हैं आंखों में दृष्टि नहीं हो रही, सब दिखेगा आपको भक्तों में भी, लेकिन उनका जीवन काल जब समाप्त होगा तो उस तो परिणाम जो होगा समय का उनके ऊपर मृत्यु के रूप में, वो उनको चिरंतन जीवन की ओर ले जाएगा। ये सुपरिणाम है समय का, इसलिए अभी समय का आदर करो तो आगे समय का परिणाम आपके ऊपर, आपके अनुकूल, आपके भाग्य में, फेवर में होगा। और बताइए, तो बड़े दिनों के, बड़े जन्मों के भाग्य से धाम में रहकर सेवा करने का अवसर मिलता है। यहां पर ना 9 करोड़ लोग एक साल में आते हैं दर्शन करने के लिए, आते हैं धक्का मुक्की में, भीड़ में, बाप रे इतनी सिक्योरिटी, इतना लाइन, ये वो चकमा देता है, कभी आपको लाइन दर्शन ही होता नहीं है, 3 घंटा धक्का खाने के बाद भी आपको लगता है मैं तो पहाड़ के नीचे आ गया, जैसे ऊपर चढ़ा था मैं, राइट टर्न लेकर दर्शन होगा, अरे ऊपर आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, तो नीचे ही उतार दिया, अभी पहाड़ चढ़ना मुमकिन नहीं है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, इतना धक्का मुक्की करके मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ गया, फिर छोड़ दिया मैंने, बोला अभी तो शक्ति नहीं मेरे पास इतना 3 घंटे के बाद। तो वो दर्शन का मामला है, आते और जाते हैं, घूमते हैं, थोड़ा प्रसाद खाते हैं, प्रणाम करते हैं, माला चलाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही सैकड़ों लोग, हजार भी नहीं कहूंगा मैं, ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर सेवा प्राप्त है। आने जाने वाले लोग बहुत करोड़ों में हैं, लेकिन रहते भी है कुछ लोग, लेकिन रह के सेवा प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग हैं। और एक है भगवान की सेवा करना, और एक है भगवान के प्रियजनों की सेवा करना, एक है आपकी सेवा करना और एक आपके प्रियजनों की सेवा करना। ज्यादा आनंद किसमें मिलता है आपको? जब आपके प्रियजनों की सेवा होती है ना, तो आपकी सेवा करने से भी अधिक आनंद आपको उसमें होता है, जब आपके प्रियजनों की सेवा हो रही है। इफ यू लव मी लव माई डॉग, ऐसे अमेरिका में कहते हैं। तो आपको मैंने प्रेम से दुलारा नहीं चलेगा, लेकिन कुत्ते को दुलारा ना तो आप खुश। ये तो कुत्ते तक भी, कुत्ते को हाथ लगा तो मालिक खुश हो जाते हैं। ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो एक है श्री जी की सेवा, एक है श्री जी के भक्तों की सेवा। वो अभी मिल रही है, कल मिलेगी कि नहीं पता नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको लगेगा 7 दिन का, तो मैंने अभी अश्योर कर लिया 7 दिन तो मिलने ही वाली है। डोंट थिंक लाइक दैट। हमारे कई लोग पहुंचते हैं, एक दिन सेवा करते हैं, अगले 7 दिन भर्ती रहते हैं, उनको उल्टी जुलाब आईवी अपने ही वार्ड में भर्ती हो जाते हैं, आंखों के मरीज के बाजू में, और फिर टिकट आने का समय होता है और ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया अभी। तो ये मत समझना ऐसा, डोंट बी अश्योर ऐसा कि हम तो आ गए अभी 7 दिन तो कृपा लेनी है हमको, लेते रहेंगे, ऐसा गर्व में मत रहना। आप मिल रही है तो लो, अब मिल रही है लेते रहो, कल भी मिल रही लेते रहो, ऐसा गर्व में मत रहो कि I have come here now, 7 days booking is there। कभी भी हमको गर्व होगा तो सेवा छीनी जा सकती है, यू विल बी डिस्कनेक्टेड। कभी उल्टी होगी, कभी पांव टूटेगा, कभी कुछ होगा, कभी दर्शन करने गए तो किसी तरह की फ्रैक्चर होगा, भाग जाएंगे यहां से मथुरा। इसलिए प्रार्थना करते रहना, यहां का रहस्य एक ही है, अगर यहां की कृपा अगर आपको मिलती रहनी चाहिए और आपको ट्यून्ड रहना है, एक ही रहस्य उसका, अंदरूनी रहस्य, इनर सीक्रेट, कीप प्रेइंग, गिव मी सर्विस। जिसको सेवा मिलने का गर्व हो गया है उससे सेवा छूट जाती है, सेवा जिसको चाहिए उसको बार बार वो गिड़गिड़ाते रहता है, प्लीज गिव मी सर्विस। जैसे आप लोग, कुछ लोग यहां पर परमानेंट रहते हो, आप लोग क्या, ये सब लोग तो क्या आते जाते रहते हैं, क्या बड़ा काम करते हैं, हम लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं, हमारा फिक्स सर्विस है यहाँ पर, तो वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गर्व करने की बात ही नहीं है। भिखारी को आपने 10 रुपए दिया तो मूर्ख होगा तो 10 रुपए गर्व करेगा, लेकिन अगर बुद्धिमान होगा तो बोलेगा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल भी आप 10 रुपए देंगे कल भी धन्यवाद करेगा, और रोज 10 रुपए देंगे तो रोज धन्यवाद करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा क्या सर 10 दिन से 10 रुपए दे रहे हैं, अभी 11 रुपए तो दो कम से कम, 12 तो दो, 10 दिन से मांग रहा हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। इसको रियल पता है कि मैं भिक्षुक हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ योग्यता नहीं है, मुझे मिल रहा है वही कृपा है, तो वो रोज पैर पड़ेगा आपके, और 10 के 5 भी दे भी कृपा पैर पड़ेगा आपके, बोले दे रहे हो आप, दे रहे हो, मैं ले रहा हूं, ये मेरा भाग्य है। तो जो परमानेंट रह रहे हैं और जो कुछ समय रह रहे हैं, सबको यहां पर याचना करनी है, कृपा की याचना करनी है। ये हमको हमारे परम पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज ने सबसे पहले वाले ब्रज यात्रा में मथुरा स्टेशन पे हमको वेलकम किया था, तभी बताया था कि यहां पर एक तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आना है, नंबर 1 पर्पज इज दिस, और नंबर 2 वो कृपा प्राप्त करनी है, तो अभी से लेकर दोबारा ट्रेन में बैठने तक हर क्षण हृदय के अंदर राधा रानी की कृपा की याचना करते रहनी है, प्लीज गिव मी मर्सी, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब कृपा करोगी हे राधा रानी, मैं कब से वेट कर रहा हूं, कब से याचना कर रहा हूं, कब कृपा करोगी राधे, कब कृपा करोगी। ये जो याचना करेगा ना उसी को निरंतर मिलता रहेगा। आपको लगेगा पेट भर गया अभी, ज्यादा कृपा की जरूरत नहीं, कल तक तो आराम है हमारा, पेट भर गया हमारा, तो नहीं मिलेगी। इसलिए पुकारते रहो राधे राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे।
ओर हमारी ओ विश्व भानु दुलारी, ओ विश्व भानु दुलारी, सुन लो टेर हमारी ओ विश्व भानु दुलारी, राधे 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 सुन लो तेर हमारी ओ विश्व भानु दुलारी, पुकारते रहो पुकारते रहो और कुछ मत करो, समय मिला काम खमत समाप्त हो गया, पुकारते रहो उसमें अंतर मत दो। तो सही में प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना कभी रुकती नहीं, काम करता हो नहीं करता हो, खाता हो पीता हो, सोता उठता बैठता स्नान करता हो, उसकी पुकार चलते रहती है और उसी की पुकार सुनती है वो। ऐसे सबकी पुकार सुनने को बैठी नहीं है, जो हृदय से पुकारता है निरंतर पुकारता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि आपके भक्तों को कैसे पहचानूंगा मैं, तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः, सतत मेरे नाम का कीर्तन करता है, दृढ़ व्रत से मुझे पुकारता है, उसी वही संत है मेरा, वही भक्त है, उसी की पुकार मैं सुनता हूं। सिर्फ हृदय में कशिश होनी चाहिए, वो कशिश प्राप्त करने के लिए यहां पर आए हम लोग। यहां वहां से झगड़ा करने के लिए मुझे जलेबी नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो पहले गया वो बाद में गया, वो ऐसा हुआ, गर्म पानी नहीं मिला, तो थोड़े बहुत कष्ट तो होते रहते हैं धाम में, थोड़ी बहुत खांसी आएगी, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वो छोटी सी कीमत है, बहुत छोटी सी कीमत है, जो होगा वो एक्सेप्ट करना चाहिए, जो है जैसा है वैसा मिलाना प्रवेश हमको। अगर आप सही में ऋणी है कि आपको प्रवेश मिला है, तो आप ज्यादा वो प्रवेश मिलने के बाद में वो क्या नमक कम था सब्जी में, हमारे मराठी में कहावत है कि क्या कहावत है वो कि अन्न क्षेत्रात जाऊन मिरपूड मागू नहीं, है ना, जहां पर फ्री खाना बट रहा है वहां जाके भाई थोड़ा नमक दे दो ना, क्या नमक कम है सब्जी में, थोड़ा सा शक्कर दे दो, थोड़ा सा मिरपूड दे दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां पर भिक्षुक है, फ्री में खाना बट रहा है, जो मिला वो लेना चाहिए, चुपचाप जाना चाहिए, धन्यवाद की भावना से लेना लेके जाना चाहिए। तो वैसे हम लोग भिक्षु बन के आना है यहाँ पर, गुरु जी बताते हैं यहाँ पर भिखारी बन के आना चाहिए, चाहे बंबई में बड़े करोड़पति आदमी होंगे आप, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे, यहाँ पर भिखारी बन के आना है, वैसा नहीं दे 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 वाला भिखारी नहीं उनसे भी सीखना चाहिए, वो जब तक आप देंगे नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं, वो एक किलोमीटर चल के आएंगे आपके पीछे पीछे, दे दे बाबा दे 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 बाबा दे 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 एक रुपया दे दे, आप बोलेंगे नहीं है नहीं है नहीं है, वो दे 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 दे, पर आप हार जाएंगे, फिर एक रुपया देंगे आपको तब वो चला जाएगा, उससे भी सीखना चाहिए, चिकाटी होनी चाहिए चिकाटी। तो वो कृपा एक रुपये वाली कृपा है, हम लोग राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, चरणों की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए रोना चाहिए पुकारना चाहिए रो रो के, तब मिलती है कृपा। तो इसलिए यहां वहां मत देखो कौन क्या कर रहा है, उसने ऐसा नहीं किया उसने वैसा नहीं किया, आपको क्या मिला और आप क्या कर रहे हो वही देखो खाली, बस उतना में आपका दिन पूरा एंगेज हो जाएगा। अगर आप खुद को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरों को ऑब्जर्व करना छोड़ दो, खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, चीटिंग तो नहीं कर रहा हूं, उतने में आपका जीवन जीवन दिन का समय जो है ना वो समय एंगेज हो जाएगा, डोंट वरी। और जो खुद को करेक्ट करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। हमारा कैसा रहता है, हम दुनिया को करेक्ट करना चाहते हैं, हमारे पास इतना कुशलता है, इतना ज्ञान है, इतना मैनेजमेंट का कुशलता है कि हम सब दुनिया को करेक्ट कर सकते हैं सिवाय खुद के लेकिन दुनिया को छोड़ के जो खुद को करेक्ट करेगा उसको भगवान कृपा करेंगे। इसलिए उसके लिए पुकारो आप भगवान को। ये पुकारने की जगह, यहाँ पर शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता सब पुकारने आते हैं, स्वयं भगवान यहाँ पुकारने आते हैं। जिनको दुनिया पुकारती है वो पुकारने के लिए यहाँ पे आते हैं। सुन लो टेढ़े हमारे, ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु की दुलारी राधा रानी, मेरी पुकार सुनो, मैं तुम्हारी याचना प्रेम प्राप्त करने के लिए यहां पर आया हूं। सखी बनकर आते हैं वो, पता है। यहां पर वैसे तो ऐसे आए, भगवान को छोड़ के, भगवान का रूप छोड़ के आए हैं, लेकिन पुरुष बनकर आए तो यहां आते हुए स्त्री बनकर आते हैं, कन्या बनकर आते हैं, घूंघट ओढ़ के आते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं वो? स्टे ट्यून्ड, वो ट्यूनिंग करके आ रहे हैं। कौन सा ट्यूनिंग आवश्यक है? वो ट्यूनिंग करके आ रहे हैं। भगवान भी यहां पर ट्यूनिंग करके आते हैं। यहां पर सखी रेवेश में आना पड़ता है तो यह ड्रेस कोड फॉलो करके आते हैं। ये नहीं कहते मैं तो ऑलरेडी भगवान का पद छोड़ के आया हूं, अभी और मत बोलो मुझे कि सखी बनना है और पल्लू लेना है और ये नहीं, जो जरूरी है वो करने को तैयार हूं। आपकी कृपा चाहिए मुझे, आप कृपा दो। मांगू मैं तेरी एक नजर, एक कृपा की नजरिया, मैं वो लेने के लिए आया हूं। आप बोलो क्या करना है, औरत बनना है, भगवान ओढ़ना है, क्या करना है बोलो। वैसे हमको होना चाहिए, क्या करना है बताओ, कौन सी सेवा करनी है? ऑपरेशन करना है छोड़ के झाड़ू मारूं क्या? हाँ चलो, आई एम कमिंग, क्या करना है बताओ खाली बस। बोला अभी ऑपरेशन बंद करो, अभी यहाँ पर कीर्तन के लिए कोई नहीं है भाई, वो ऑपरेशन करेगा, आप कीर्तन करो, तो कीर्तन करने को बैठना चाहिए। बोलेंगे बंद करो कीर्तन, वहां पर वो रोटी बेलना है, जो बताए वो किम कर रहा, क्या करूं, क्या सेवा में कर सकता हूं मैं, वैसा मूड होना चाहिए। नहीं नहीं वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम हो गया, 6 बज गया ना, ड्यूटी भी खत्म हो गया मेरा, अब मेरा घूमने का समय है, मैं श्री जी मंदिर जा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो करने को आए वो करने के तत्पर होना चाहिए, उसके लिए याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पुकारना चाहिए, और पुकारने के बाद सेवा मिल रही है तो छोड़ के भागना नहीं चाहिए, है ना। दूर से आए सेवा करने के लिए और सेवा मिल रही है, इमरजेंसी में आपको ही चुना जा रहा है, लकी हो आप, तो वो करना चाहिए। इसलिए रेडी रहो आप, हाँ पुकारते रहो, समय मिलेगा पुकारते रहो, सोते जागते उठते बैठते राधे राधे पुकारते रहो, हरे कृष्णा पुकारते रहो, तब आपका यहाँ आना सफल है, यहाँ से वापस जाना भी सफल होगा आपका, क्योंकि आप कुछ लेके जाओगे। जब ऐसे रहोगे तो कुछ लेके जाओगे, नहीं तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट के जाओगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।